सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण्यम् भृत्यार्तिहम् प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। स्वरम् आषाढ़वदी तीज सोमवार रानी जी की कोठी, पता नहीं कब का है। भगवान में लगे रहो, साधन भजन में तत्परता रखो, ये तीन बातें समझाइए। थोड़ा लेख बड़ा है, टाबरान थोड़ो, अब आर ई टाबर नहीं बोलन दो। एक तो सबसे बढ़कर मार्के की बात यह है कि बर्ताव सबसे बहुत उत्तम होना चाहिए। सेवा भाव सबके साथ होना चाहिए, यानी दूसरों को आराम पहुंचाओ। हम लोगों में सेवा भाव की बड़ी भारी कमी है, अकाल पड़ा हुआ है। अरे इस युग में सेवा ही असली धन है, इसको जितना कमाओ उतना कमाओ। दूसरों को आराम पहुंचाना, ये अब धीरे धीरे बात लोगों के समझ में ही नहीं आती है। ये हम लोगों की बड़ी भारी कमी है। प्रायः लोग अपने अपने घर जाकर दूसरे दूसरे काम में फंस जाते हैं। ऐसा मत करो, जो कुछ भी साधन यहां करते हो उसके अनुसार घर पर ज्यादा साधन करना चाहिए। यहां 2 महीने रहकर जो कुछ किया, साधन किया, उसके लिए बराबर प्रयत्न करो। सत्संग में जो बातें सुनी गई, एकांत में 10 महीने घर में रहकर उसी का साधन करो। जैसे पढ़ने वाला 1 घंटा पढ़कर 3-4 घंटे उसका मनन करता है, इसी प्रकार सीख करके 10 महीने साधन करना चाहिए। जिस काम के लिए हम लोगों को जन्म मिला है, उस काम को 1 साल के भीतर भीतर जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर का मेरे सिर पर हाथ है, इसलिए उसको करने के लिए परमेश्वर पर उम्मीद रखो। परमेश्वर की मदद पाकर विशेष सफल होना चाहिए। मालिक की दया है फिर के चिंता है। निर्भय होकर तत्परता के साथ साधन करना चाहिए। परमेश्वर के बल का आश्रय लेकर जो संसार में विचरता है उसके कार्य की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। हमें ईश्वर के बल पर प्रयत्नशील होना चाहिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम् तम् येन माम उपयान्ति ते। वे लोग जो मेरे में भक्ति करते हैं, मेरे में मन लगाने वाले हैं, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले हैं, मैं उनको बहुत बड़ा भक्ति मानता हूं। ऐसे भक्त मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा मेरे गुण प्रभाव का कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में नित्य निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्त को मैं वह तत्व रूप योग देता हूं जिससे मेरे को प्राप्त होते हैं। संसार में जो हमारा प्रेम बटा हुआ है वह सब प्रेम भगवान में समेट करके डाल दो। हमारा दृढ़ प्रेम भगवान में होने का सबसे बढ़कर यही उपाय है, या सबसे भगवान के लिए प्रेम करो, या तो सबको भगवान समझ करके प्रेम करो, या सबसे प्रेम हटाकर एक भगवान में लग जाओ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। द्रौपदी, गोपियां, ध्रुव, प्रहलाद, शबरी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, सबको भगवान प्रेम से मिले हैं। भगवान के मिलने के लिए सबसे बढ़कर साक्षात उपाय भक्ति कहो या प्रेम कहो, एक ही बात है। भगवान को छोड़ करके और किसी में भी भक्ति न हो, वह अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति होने के लिए सत्संग और भगवान नाम का जप करना चाहिए। भगवान के नाम का जप कलिकाल में बहुत श्रेष्ठ है। भगवान में प्रेम उत्पन्न होने के लिए भजन, ध्यान, सत्संग करना बहुत जरूरी है। इससे भगवान में प्रेम होता है। एक बात बहुत महत्व की याद आई है, हम लोगों को हरेक मनुष्य को भगवान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। हमने एक को भी भगवान की भक्ति में लगा दिया तो बड़ी भारी दलाली का काम कर लिया। इस दलाली का फल है भगवान हरेक मनुष्य को लोभ देकर या उनकी सेवा करके भगवान की भक्ति में लगाओ। भगवान की भक्ति में वही पुरुष दूसरों को लगा सकता है जिनके आचरण पवित्र हो और स्वयं भक्ति करता हो। लोक दिखाऊ भक्ति करने से आचरण का सुधार नहीं होता है। अपनी योग्यता साधारण हो तो अपनी योग्यता के अनुसार ही दूसरों को भक्ति में लगाने की चेष्टा करो। एक स्त्री या पुरुष ने किसी को भगवान की भक्ति में लगा दिया हो तो उसने तीर्थ के अंदर लाख रुपया दान देने से भी बड़ा काम किया है। एक आदमी माला फेरता है परंतु झूठ बोलता है, कपट करता है, गाली गलौज करता है, दूसरों में दोष देखता है, दूसरे की निंदा करता है, उससे क्या विशेष फायदा होगा? नहीं होगा। ऐसे ही कोई स्त्री घर वालों से लड़ाई करती है, अपने लिए वस्त्र और गहनों के लिए पति को तंग करती है, ऐसी स्त्री घोर नरक में जाती है। स्त्री के लिए पति को परमेश्वर समझकर सेवा करे तो उसका बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। उसी स्त्री की दूसरी स्त्री भी बातें सुनती है कि देखो वो ऐसी ऐसी सेवा करती है तो दूसरों पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे संसार में जो खुद नहीं करते और दूसरों को सुनाते रहते हैं, उनका उपदेश दूसरों को लगता नहीं है। जिसमें त्याग, सदाचार, भक्ति न हो उसका असर दूसरों पर नहीं पड़ता है। जिस स्त्री के खाने पहनने शौकीनी में आ सकती हो, उसका असर दूसरी स्त्री पर अच्छा नहीं पड़ेगा। जिसके भोजन में कपड़ों में सादगी आई है तो समझना चाहिए वह साधन के और बढ़ रही है। भोजन और वस्त्र की सादगी परमात्मा की प्राप्ति का पहला चिन्ह है। ये बाहर से मामूली बात दिखती है परंतु शुरुआत की दृष्टि से बहुत अच्छा है। वैराग्य को आगे बढ़ाने के लिए यह सूत्रपात है। वैराग्य में रहने की इससे आदत बनती है। तड़काऊ भड़काऊ वस्त्र मत पहनो और साधारण स्वच्छ पवित्र भोजन करो। क्या हो गया, बहुत बड़े पलंग पर सो गए तो, और जमीन पर सो गए तो, खटिया पर सो गए, इससे क्या फर्क पड़ता है? नींद में क्या फर्क पड़ता है? मीठा खा लिया तो क्या हो गया, और रूखी सूखी रोटी खा ली तो क्या हो गया? कई दिनों से मन में आ रही है, कई दिनों से क्या पाठ है रसोई लेवा आ घणो बढ़िया तो नहीं, कई दिन से आ रही है, मानो बल मिल गयो। कोई भी रसोई करे सीधी रसोई बनावा, अबके तो थोड़ो चाल गयो। कोई माता ने दुख नहीं देनो चाहवा, तकलीफ नहीं देनो चाहवा कि भाई यार रसोई किया मना कर। आगे विचार यदि राम जी कोई मौको दियो तो वही है, सादगी रसोई होनी चाहिए। आज सुबह तो विशेष मन में आए थे कि भाई आपा बाता सेठ जी री करा हा और भोजन किया को करा हा। आज सुबह आई विशेष, सेठ जी बोल गया आज अब आज्ञा हो गई है। आज ही लेख रो नंबरीज को नहीं होनी, लुकी सुखी खाली तो क्या हुआ, मिष्ठान खाया तो क्या हो गया? कपड़ा खूब मोटा पहनो, अच्छा मोटा, इससे स्वाभाविक वैराग्य होगा। केवल सुने ही सुने धारण नहीं करें कैसे मुक्ति होगी? शौकीनाई का नाम निशान नहीं रहना चाहिए। शौकीनाई तीन चीज में ज्यादा रहती है, भोग में, आराम में और स्वाद में। इन सबको विष के समान समझना चाहिए। भगवान के ध्यान के आनंद के सामने ये सब मलमूत्र के समान भी नहीं है। भगवान में भगवान की ओर ध्यान लगाया तो आत्मा गदगद होती है। जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है उस शरीर से भोग विलास खाने पीने का आनंद कहां इस शरीर को ले जाकर पटक दिया? भोग विलास में प्रेम करने लग गए। शरीर शरीर से प्रेम है, ये मलमूत्र के साथ प्रेम है। जन्म व्यर्थ जा रहा है, कितना बड़ा घाटा लग रहा है। भोगों के साथ प्रेम किया, एक आनंद सागर की दोस्ती को छोड़ करके गंदे भोगों में फंस गए, इन भोगों से दोस्ती कर ली, इससे बड़ी क्या मूर्खता होगी? हरे एक भाई ने यह बात सोचनी चाहे कि इस जन्म में कार्य की सिद्धि नहीं हुई तो मरने के बाद होगी क्या? अभी नहीं हुई तो फिर कब होगी? पश्चाताप करो, रो और अपना सुधार करो, जीवन को बदलो और साधन में जोश पूर्वक लगो, भगवान का बल लेकर उत्साह रखो। खान पान सादगी का होना ये कोई बहुत बड़ी त्याग की बात नहीं है, है तो मामूली बात, परंतु इससे मन की वृत्तियों पर और भाव पर बहुत असर पड़ता है। सादा भोजन हो और स्वच्छ हो, पवित्र हो, कमाया हुआ भी पवित्र हो और बनाया हुआ भी पवित्र हो, पवित्र भोजन, सादा भोजन। कंचन कामनी का त्याग, सांसारिक कार्य और विषय भोग का त्याग करना चाहिए। कंचन कामनी का त्याग, सांसारिक कार्य और विषय भोग का त्याग, इस पर ध्यान देना चाहिए, मनुष्य को ख्याल करना चाहिए, उसको अपने मन में बहुत सावधान रहना चाहिए, स्त्रियों से ज्यादा संपर्क नहीं करना चाहिए, ये साधन में बड़ी बाधक चीज है। इसी तरह स्त्री को भी दूसरे पुरुषों का देखना बड़ा भारी बाधक है। स्त्री पुरुष का जो मेल है वो विषय वासना को तैयार करके और फिर डुबो देने वाला है, इसलिए पत्थर बांधकर डूबने वाला तैराक भी डूब जाता है। इस मामले में सावधान रहो, इससे बचो। ये जो आपस का मीठा प्रेम दिखता है, ये जो संबंध है, ये गिराने वाला है। लेश मात्र का संबंध भी साधन में बड़ा भारी विघ्न करता है। बद्रीनाथ की घाटियों में जाने वाला व्यक्ति जरा सी गलती से जैसे बहुत गहरे गड्ढे में चला जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों का पुरुषों से, पुरुषों का स्त्रियों से जो संबंध है, मेल है, ये मृत्यु के अंदर, मृत्यु से भी बढ़कर हानिकारक है, बहुत बड़ा भारी विघ्न है, धर्म को डुबाने वाला है। इससे बचो, समझना चाहिए, बड़ी भारी आपत्ति से बच गए, बड़े भारी नीचे गड्ढे में गिरने से बच गए। ब्रह्मचर्य का भाव बहुत उत्तम है। जो आदमी मन से, वाणी से, शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ बेदाग रहता है, उसमें सारी बातें अपने आप पैदा होती है, उसका साधन बहुत अच्छा हो सकता है। वह केवल ब्रह्मचर्य के बल से जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण देखना हो तो भीष्म पितामह को याद कर लो। यदि पहले किसी से बुरा काम बन गया हो तो अब उसकी चिंता छोड़ो, भगवान के आगे जाओ, रो, प्रार्थना करो, हे भगवान अब आप मुझे क्षमा कर दो, आप क्षमा की मूर्ति हो, अनजाने से मेरे से बुरा काम हो गया, भगवान पर विश्वास रखो, भगवान उसे क्षमा कर देंगे। आगे के लिए मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार का दोष न घटे। यदि दृष्टि जाए तो मन को धिक्कारना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, भगवान से फिर कहो, देखो भगवान क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा हो गया, खूब सावधान रहो। करो तो सावधान रहना चाहिए। आप भी विचार करो, आप करना तो चाहते हो सूकर और कुकर जैसा काम, और चाहते हो भगवान की प्राप्ति कैसे हो, आप कर क्या रहे हो, करने पर ध्यान नहीं देते, हम भगवान कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, कुत्ते और सूर जैसा तो काम करते हो, कहां तो परमात्मा का दिव्य स्वरूप और कहां ये विष्टा मूत्र की थैली, इससे प्रेम। परमेश्वर ख्याल करेगा तो कहेगा, तू मेरा कुछ नहीं प्रभाव जानता भैया, तू मलमूत्र से प्रेम करता है, जा इस मलमूत्र का कीड़ा बन जा। परमात्मा का आनंद लेओ तो सही, ये कब लोगे। ये चार साक्षात महान मृत्यु रूप शत्रु है, एक आलस्य, एक प्रमाद, एक भोग और एक पाप। ये प्रमाद और पाप तो घोर नरक में ले जाते ही हैं। आलस्य और भोग ये पाप करा करके नरक में ले जाते हैं, प्रमाद और पाप तो सीधे नरक में ले जाते हैं। आलस्य और भोग है ये पाप करा करके, पाप के रास्ते से नरक में ले जाते हैं। भोग में त्यागने योग्य कंचन कामिनी, शरीर का आराम, मान बड़ाई, ये पांच बातें हैं, सबसे बचो। ये पांचों जिनमें नहीं है वो सारी दुनिया का पूजनीय है। इनमें भी गहराई से देखो, सबसे बलवान बाधक है बड़ाई। किसी में मान का दोष, किसी में कामिनी का दोष, किसी में कंचन का दोष, किसी में आराम का दोष, किसी में स्त्री विषयक दोष मालूम नहीं पड़ सकता। इन दोनों से पार लंग जाए सारी दुनिया को जीत सकता है मान बड़ाई से। कारण कि स्त्री की आसक्ति का भी ज्ञान होता है, आराम का भी ज्ञान होता है, कंचन का भी ज्ञान होता है। इन सब के अंदर जो अपनी भोग वृत्ति है इसका ज्ञान होता है, इसलिए इससे तो अलग वो मान बढ़ाई का ऐसा ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म है मान बढ़ाई, इससे बहुत बचने की जरूरत है। भोग की व्याख्या, स्वाद जीवा के भोग में नहीं फंसना चाहिए, बढ़िया बढ़िया पदार्थ। ये आराम भी भोग का अंग है, रुपया धन आदि इकट्ठा करना भी भोग सामग्री है। किसी चीज की देखने सुनने की इच्छा है, यह भी विषय भोग की एक जंगा है। जंगा माने जगह है, चूरू की भाषा में बोलते हैं, आज जंगा मारी है। विलासिता सांसारिक भोगों का एक मोटा रूप है, ये सारे भोगों के अंग है। इनको पाप में हेतु समझे और ये पाप कर्म में पटक देते हैं। इन सब बातों को सोचकर सावधानी से चलो। एक आदमी भजन ध्यान भी करता है और उसमें दोष भी है तो समझना चाहिए कि इसने भजन ध्यान का दाम समझा नहीं है, इसकी दृष्टि में भजन ध्यान की कीमत नहीं है और वो अपने ही दोषों के कारण से आगे बढ़ने में रुक जाता है। हम लोगों के लिए ये जो विलंब हो रहा है इसमें यही भोग प्रधान शौकीनी ये महान बाधा आ रही है। संसार की आसक्ति कह दो चाहे भोगों की आसक्ति कह दो, एक ही बात है। जैसे वृक्ष में पानी सींचा जाए और वो वृक्ष न बढ़े तो अनुमान लगाना चाहिए कि इस वृक्ष में दीमक लगी हुई है। काम क्रोध लोभ निद्रा आलस्य इन सब दीमक को निकाल करके बाहर फेंक दो। साधन तेज हो तो अंतःकरण साफ होकर ऊंची स्थिति हो जाएगी। बीमारी तो एक शारीरिक रोग है, शरीर है तब तक यह है, परंतु काम क्रोध लोभ आलस्य प्रमाद ये मानसिक रोग है और मन का इस जीव से संबंध तत्व ज्ञान के बिना भगवत प्रेम के बिना छूटता नहीं है। लोक लोकांतर तक ये चीज रहेगी। शरीर की बीमारी तो शरीर के खत्म होते ही खत्म, पर ये बीमारी हर जन्म में तंग करेगी, इससे नष्ट हो जाओगे। इसलिए इन्हीं के ही नाश करने में लगो। भजन ध्यान सत्संग छोड़ो मत, ये आपके पास प्रबल शस्त्र है। जैसे किसी पर फांसी का मुकदमा लग जाए तो वह उससे छूटने के लिए कितनी कोशिश करता है, कितनी खुशामद करता है और हर समय वकीलों से कानून की पुस्तक दिखाने की और देखने की चेष्टा करता है। ऐसे हमको संसार से मुक्त होने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। हम लोगों पर भी यमराज जी का मामला चल रहा है, इसकी पैरवी करो। इस शरीर का नाश होना फांसी है। भविष्य में जन्म नहीं हो, दुखालय संसार में दुख के भाजन न बने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा समझकर इसके लिए खूब खुशामद और पैरवी करने की आवश्यकता है। खुशामद करो महापुरुषों की, भगवान की, इनकी खुशामद करने से पार लंग जाओगे। किसी को 6 महीने की जेल हो जाए उससे उसकी भूख और नींद उड़ जाती है, वह उसके छूटने के लिए तड़फड़ता रहता है। इतना प्रयत्न यदि 84 लाख योनियों से छूटने के लिए करें तो संभव है कि छूट जाए। ऐसा मौका पाकर कल्याण नहीं हुआ तो अपने आने में लज्जा की बात है। क्या मनुष्य शरीर में आए तो लज्जा की बात है। मनुष्य का जन्म पाकर जो नाना प्रकार के पाप करे उनसे तो कुत्ते बहुत अच्छे हैं। उन्हें अपनी आत्मा को धिकारना चाहिए हम लोगों को। उनके माता पिता को भी धिक्कार है कि संसार में ऐसी संतान पैदा करके आपने कलंक को बढ़ाया है। मनुष्य का जीवन पाकर कुत्ते की मौत मरे, कितना बेतुका और कितना लज्जा का ये दृश्य है। माता पिता कोई पत्थर पटकते हो तो वो भी काम तो आता है, लेकिन हमको जन्म दिया और हमने उसका आदर नहीं किया, कितनी मूर्खता है। ख्याल करो, लोग तीर्थों में जाते हैं, किसी ने 4 धाम कर लिए, किसी ने 3 धाम कर लिए, तब भी उनके आचरण और स्वभाव वैसे ही पड़े तो लोग उन्हें धिक्कारते हैं। सो ठीक ही है, क्यों तीर्थों में जाकर कष्ट पाए, रुपया खर्च किया, समय बर्बाद किया और जो करना चाहिए वो आचरण ठीक नहीं किया। आजकल तो लोग केवल भागते रहते हैं। आगे के लोग तीर्थों में जाते थे, वहां कम से कम 8-10 दिन ठहर कर भजन ध्यान करते थे, दान पुण्य व्रत उपवास करते थे, इससे उनके अंदर पवित्रता आती थी। आजकल हाय हाय करके तो भागते हैं और तीर्थ का दर्शन किए और अपने घर के आने में जरा सी विलंब हो जाए छटपटाते हैं और वापिस हाय हाय करते ही घर की तरफ दौड़ते हैं। क्या है ये, कोई आचरण ठीक करने के तरीके हैं? हम लोग तो ऐसों को धिक्कारते हैं, काई जची आज। इसी प्रकार हम लोगों का स्वभाव भी वैसा ही बना रहा तो हमें भी लोग ऐसे धिक्कारेंगे कि इतने दिन हो गए, इतने वर्षों से लोग हो गए, ये लोग ऋषिकेश में जाते हैं, गीता भवन जाकर सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, क्या हुआ इन लोगों, क्या फायदा हुआ? उन लोगों में हमारे आचरण देख करके सत्संग के प्रति भिलाई आती है और इससे उन लोगों को नुकसान होता है कि जो लोग भजन ध्यान की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं वे रुक जाते हैं, उनको रोकने का पाप लगता है। वे लोग भजन ध्यान करके मुक्त हो सकते थे लेकिन हमारे व्यवहार के खराबी के कारण बिचारे कल्याण करने में रुकावट पैदा करके बैठे हैं। इसलिए ऐसा समझकर अपना अपना सुधार करें, जल्दी करें। शरीर मन बुद्धि हमारी है, उन्हें भगवान की तरफ लगाने में क्या कठिनाई है? शरीर मन बुद्धि हमारी है, उन्हें भगवान की तरफ लगाने में क्या कठिन बात है। दूसरे की चीज लेकर लगावे तो कुछ कठिनता हो, अपना ही शरीर, अपना मान, अपनी बुद्धि, अपना मन, मान नहीं मन, ये भगवान की तरफ लगाए। वैसे सब कुछ भगवान का है पर मानते कहाँ है तो भगवान के पर मानते अपने, चलो अपना मानते हैं तो भी कहो कि अपना है, तब तो हम भगवान में लगाने में स्वतंत्र हैं। जैसे दूसरे की वस्तु लेकर हम भगवान में लगाए तो कठिनता है, अपना शरीर मान लिया तो अपने शरीर को लगाओ, अपने एक एक क्षण का हिसाब रखो, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। कोड़ियों के बदले में ऐसा अमूल्य जीवन को खोया जा रहा है, कैसी मूर्खता है। पैसा हो गया, धन हो गया, क्या हो गया, कोड़ियों के बदले में जीवन जा रहा है। मनुष्य जीवन पाकर यदि शरीर निर्वाह की सामग्री ही इकट्ठी की तो पशु पक्षी और मनुष्यों में क्या फर्क है। पशु पक्षी अच्छे हैं, बेचारे कभी संग्रह नहीं करते, कुत्तों का कोई खाने पीने का भंडार नहीं, सुअर का भंडार नहीं, पशु पक्षी का भंडार नहीं, जाता उड़ते फिरते जाते निर्वाह कर लेते हैं। इसलिए भोगों को लात मारकर ऋषि मुनि पहले जिस काम में लगे हुए थे उसी काम में लगना चाहिए। ये कार्य तत्परता से ही हो सकेगा, केवल बातों से नहीं होगा। अपने को ईश्वर का चपरासी मानना चाहिए। हम लोग ईश्वर के चपरासी बन जाएं तो काम जल्दी हो जाए। ईश्वर का चपरासी कौन है? भगवान का चपरासी भक्ति ही है। जो थोड़ी भी भगवान की भक्ति करता है वह भगवान का भक्त होता है। इसलिए हरेक को अपने को भगवान का चपरासी समझना चाहिए। चपरासी जैसा आदेश दे उसके बाहर नहीं जाता है, ऐसे भगवान ने जो कहा है आदेश दिया उसके बाहर न जाए। हम नाम मात्र के तो ईश्वर के चपरासी हो गए, अब करने में और सावधान हो जाओ। इसलिए अब हम ये विचार करें कि भाई हम तो भगवान के चपरासी हैं, अब काम क्रोध आदि की सेवा नहीं करेंगे, अब तो भगवान का चपरास ले लिया, अब इनको हम भगाएंगे या नहीं रहने देंगे। गवर्नमेंट की 10-15 रुपये मासिक की नौकरी करने वाला चपरासी भी गवर्नमेंट की 10-15 रुपया मासिक की नौकरी करने वाला चपरासी भी करोड़पति को हथकड़ी बेड़ी डालकर ले जा सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का चपरासी है। जबकि हम ईश्वर के घर के नाम मात्र के सिपाही हैं, तब हम इन काम क्रोध आदि को जान से क्यों नहीं मार सकते। इधर से आ जाओ, इधर इधर से आकर के जाओ। ये काट देना, इधर से उधर से नहीं काट देना बाद में। तब हम इन काम क्रोध आदि को जान से क्यों नहीं मार सकते, हमारा इतना पावर है और ईश्वर का हुक्म है, फिर भी हम इनसे डरते हैं, इनके सामने घुग्गू बन जाते हैं और इनके वश में हो जाते हैं, फिर चपरास को लज्जित क्यों करते हो? इनको हथकड़ी डालकर वश में करो, मालिक की आज्ञा का पालन करो, ईश्वर का अपने सिर पर हाथ मानकर इन काम क्रोध आदि पर विजयी बनो। भगवान के राज्य में रहकर यदि हम इन्हें नहीं मार सके तो भगवान कहेंगे कि हमारे राज्य में सिपाही रहने के लायक भी तुम नहीं हो, निकलो यहां से। इसलिए वीरता के साथ इनको मार भगाना चाहिए। संसार में महात्मा का सहारा मिलने पर वह चाहे सो काम कर सकता है, महान बन सकता है। परमेश्वर का सहारा पाकर डरे तो वह भगवान के ऊपर कलंक लगाता है। काम क्रोध लोभ मोह हमें जूता मारते हैं तो हम भगवान को जूता लगा रहे हैं, ऐसी बात नहीं मिलेगी। उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में भगवान के हम हो गए और अब काम क्रोध लोभ आदि हमें जूता मारते हैं तो हम भगवान के ये जूता लगा रहे हैं, इतना अपमान होता है भगवान का। वापिस जूता मारो और काम क्रोध लोभ आदि को भगाओ भगवान के राज्य में, तुम राज्य चलाओगे। जानते नहीं कौन है, हम भगवान के चपरासी हैं, भगो यहां से। फिर देखो भगवान का बल कैसे उनको भगाता है। जब तुम काम क्रोध आदि से पीटे जाओ तब तुम भगवान को खबर कर दो, हे भगवान फौज तैयार करो, हमको थोड़ी फौज दो और इन्हें हम नष्ट करेंगे। परमात्मा तो राजा है, हम लोग उनके चपरासी हैं। हम लोग चपरासी होते हुए काम क्रोध आदि से पीटे जाते हैं, कितनी लज्जा की बात है। जैसे वायसराय को यह मालूम हो गया कि अमुक थानेदार चोर डाकुओं द्वारा पिटा गया तो वह फौज भेजकर चोर डाकुओं का क्या दमन नहीं करेगा, अवश्य करेगा। परमात्मा की दया मानो, उनके बल पर काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजय करो। परम पद का सरल मार्ग यही है, इधर चलो। व्यवहार स्वभाव वाणी आचरण खान पान रहन सहन सबके अंदर परिवर्तन लाओ, सादगी लाओ, शौकीनी हटाओ। ये संसार स्वाद के लिए नहीं है, निर्वाह के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। भगवान का भजन ध्यान सत्संग ये भगवान की फौज है जो काम क्रोध लोभ आदि को मारने के काम आती है। इस फौज को पकड़ो, भगवान का भजन करो, सत्संग करो, ध्यान करो, ये भगवान की फौज बड़ी सशक्त है। भगवान के प्रभाव रहस्य गुण इनका स्मरण करते रहो, चलते उठते बैठते उनकी दया और उनके प्रेम को याद करके मोहित हो जाओ भगवान पर। और हरदम ये ध्यान रखो कि मेरे पर बहुत खुश है परमेश्वर, मेरे पर बहुत खुश है, उनकी मेरे पर बड़ी मेहरबानियां हैं। प्रभु थोड़ा मौका मिलते ही मिलने के लिए तैयार है। हे प्रभु बड़ी आपकी मेरे पर कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़े मस्त रहो। भगवान के साथ रहते हुए भगवान का बल पाते हुए आनंद नहीं मनाया तो क्या हुआ, मानव शरीर का और भगवान के मिलने का, भगवान हमारे साथ इसका फर्क क्या पड़ा। भगवान का नाम उच्चारण के साथ उनकी मीठी मीठी मूर्ति का लक्ष्य करो, मधुर मूर्ति का दर्शन करो, भगवान को अपने नेत्रों के सामने से बिसारे ही नहीं, भूले ही नहीं। शोक चिंता भय ये रास्ता खत्म हो गया, अब इस रास्ते से हमें यात्रा करनी नहीं है। हर समय आनंद में झूमते रहो, ये तो घर की चीज है, इसमें कठिनता क्या है। ये मन को बराबर समझाते रहो, भजन ध्यान सत्संग इनसे बड़ी सुगमता होती है। बुरी आदत छुड़ाकर उस परमात्मा में मग्न होकर मधुर मूर्ति को देख देख कर जीवन बिताओ, नहीं तो फिर आगे जन्म जन्मांतर तक पछताना पड़ेगा। इसलिए एकदम साधन में संलग्न होकर भगवान का साक्षात्कार कर मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। सौ परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिता, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय सियावर रामचंद्र जी की जय। बड़े आनंद की बात है। गोपाल जी महाराज।